आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार विशाली जैन के साथ। गठबंधन की चुनाव योजना के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई घरों तक 2023 तक न्यूक्लियर ऊर्जा पहुंच सकती है। विपक्ष नेता पीटर डटन ने इस अपेक्षित योजना का अनावरण किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर गठबंधन सरकार आती है तो ऑस्ट्रेलिया के खनिज ऊर्जा पर चलने वाले क्षेत्रों में बिजली न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा के जरिए पहुंचाई जाएगी। उनका कहना है कि कोयले से चलने वाले पावर स्टेशन्स के ही स्थान पर 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाए जाएंगे और इनका मालिकाना हक फेडरल सरकार के पास रहेगा। ये 7 ऊर्जा केंद्र विक्टोरिया के लॉय यांग पावर स्टेशन, क्वींसलैंड के कैलेड और टरोंग और न्यू साउथ वेल्स में माउंट पाइपर और लिडल में बनाए जाएंगे। वहीं फेडरल जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बाउन का कहना है कि ये योजना नेट शून्य उत्सर्जन के सारे लक्ष्यों से भटकाती है और ये भी कि इस पूरी योजना की लागत की कोई जानकारी नहीं दिया जाना विपक्ष की योजना की अस्थिरता को झलकाती है। वहीं ज्यूइश लेबर सांसद जॉश बर्न्स ने उनके मेलबर्न स्थित दफ्तर पर हुई आगजनी और नुकसान के बाद एक याचना जारी की है कि इस राजनैतिक हिंसा को रोका जाना चाहिए। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। हमलावरों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की, ऑफिस के अंदर पेंट से नारे लिखे और दफ्तर के अंदर ही 2 अलग अलग जगहों पर आगजनी भी की। श्री बर्न्स ने इस हमले को गाजा हमलों के बीच जारी राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं क्वींसलैंड के एक सार्वजनिक अस्पताल में मेडिकल स्कैन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किए जाने की सारी तैयारी कर ली गई है। क्वींसलैंड के प्रीमियर स्टीवन माइल्स ने स्वास्थ्य सेवा में इस तकनीक के प्रयोग का स्वागत किया है। गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की है कि वे AI के इस्तेमाल से एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन जैसी स्कैनिंग सेवाओं के नतीजे जल्द देने का प्रयास करेंगे। अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग को सुनियोजित करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है ताकि स्टाफ की कमी और बढ़ती मांग के बीच प्रतीक्षा के समय को कम किया जा सके। अस्पताल निदेशक डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि तकनीक के प्रयोग के कारण स्टाफ में कमी होने की उम्मीद नहीं की जा रही है। रिफ्यूजी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का दूसरी ओर कहना है कि इस साल के रिफ्यूजी सप्ताह की थीम ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के शरणार्थियों की सबसे गहन मुश्किलों की परिचायक है। यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी यानी UNHCR का कहना है कि मई 2024 तक दुनिया भर में रिफ्यूजियों की संख्या लगातार 12वें साल बढ़कर 120 मिलियन हो गई है। गाजा, म्यांमार, सूडान और DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो जैसी जगहों पर बड़े संघर्ष जारी हैं। रिफ्यूजियों का आंकड़ा बीते दशक में 2 गुना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि विश्व में 69 में से एक व्यक्ति हिंसा या मानवाधिकार हनन के चलते अपना घर छोड़ने को मजबूर है। ऑस्ट्रेलिया ये 36वें साल है कि रिफ्यूजी सप्ताह मना रहा हो और इस साल की थीम है फाइंडिंग फ्रीडम फैमिली। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में समर्थन जुटाने के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंची हैं। श्री पुतिन ने बदले में नॉर्थ कोरिया के सुरक्षा और व्यापार को पूर्ण समर्थन का वादा किया है। उनका ये पत्र उत्तर कोरियाई मीडिया ने प्रकाशित भी किया है। उनका कहना है कि इन दोनों देशों ने बीते 70 सालों में अपनी बनाई व्यवस्थाओं के आधार पर, जिनमें पश्चिम ने नियंत्रित नहीं किया गया है, एक ऐसा संबंध बनाया है जो कि दृढ़ भी है और स्थायी भी। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा तब आती है जब नॉर्थ कोरिया के सैनिक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन पार करके साउथ कोरिया में प्रवेश कर गए थे और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। और अब अंत में खबरें भारत से। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में करोड़ों लोगों को पिछले कई हफ्तों से भीषण गर्मी और हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों की हीटवेव से जुड़ी बीमारियों की वजह से मौत तक हो चुकी है। हालांकि भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से आज राहत भरी खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बुधवार को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश बताई गई है और अगले 2-3 दिन में तापमान में गिरावट की भी उम्मीद की गई है। दिल्ली NCR समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से भयंकर लू का संकट झेल रहे आम लोगों को अगले 2-3 दिन में राहत मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को इस बारे में पूर्वानुमान जारी किया था। इसकी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को बताया जा रहा है जो फिलहाल जम्मू कश्मीर के ऊपर केंद्रित है। इसी के साथ 19 जून 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। DJ वृषाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।